एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
एकत्र ज्ञान गोष्ठी में मैं हूं आपकी मेजबान
और मैं हूं आपका साथी मेजबान। आज हम गोता लगा रहे हैं पत्रकारिता की दुनिया में।
हाँ, और हमारे गाइड होंगे इयान हारग्रीव्स। हम उनकी दो अहम किताबों जर्नलिज्म और जर्नलिज्म अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन के सार के जरिए समझने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पत्रकारिता है क्या, इसका असल मकसद, रोल क्या है, और आज के इस डिजिटल तूफान में इसका भविष्य क्या है।
और ये सवाल तो आज शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गए हैं।
मतलब चारों तरफ जानकारी का एक सैलाब सा है,
हाँ, सच और झूठ में फर्क करना ही मुश्किल हो गया है।
और मीडिया पर भरोसे की बात, वो तो खैर एक अलग ही मुद्दा बनता जा रहा है।
सही कहा। तो ये समझना कि खबरें हम तक पहुंचती कैसे हैं, उनका समाज पर असर क्या होता है और पत्रकारिता अपना रोल, अपना लक्ष्य कैसे निभा रही है, ये आज हम सबके लिए जानना जरूरी है।
और देखिए, इस चर्चा के लिए इयान हारग्रीव्स एक बहुत ही सही शख्सियत हैं। उनकी खास बात यह है कि वो सिर्फ किताबी विद्वान नहीं है।
अच्छा।
हाँ, वो कार्डिफ यूनिवर्सिटी में पत्रकारिता के प्रोफेसर तो रहे ही हैं, सेंटर फॉर जर्नलिज्म स्टडीज की नींव भी रखी उन्होंने, लेकिन उससे पहले वो खुद एक मंझे हुए पत्रकार और संपादक रह चुके हैं।
अरे वाह, कहाँ कहाँ काम किया उन्होंने?
उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स और द इंडिपेंडेंट जैसे बड़े अखबारों को एडिट किया है, और तो और बीबीसी न्यूज एंड करंट अफेयर्स के डायरेक्टर भी रहे हैं।
तो मतलब उन्हें दोनों दुनिया का अनुभव है।
बिल्कुल, वो न्यूज़ रूम की गहमा गहमी, वो डेडलाइन का प्रेशर और बिजनेस की जो जरूरतें होती हैं उनको भी समझते हैं, और साथ ही पत्रकारिता के जो आदर्श हैं, उसकी सामाजिक जिम्मेदारी, उसको भी गहराई से जानते हैं।
यानी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का तजुर्बा, ये तो वाकई उन्हें एक अलग नजरिया देता होगा। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि पत्रकारिता क्या है,
हाँ, बल्कि ये भी कि ये क्यों जरूरी है और असल में जमीन पर काम कैसे करती है।
तो उनके काम का सार क्या है, पत्रकारिता क्या है उनकी नजर में?
देखिए, हारग्रीव्स के काम का निचोड़ यही है कि पत्रकारिता सिर्फ खबरें पहुंचाना नहीं है, ये लोकतंत्र का एक बहुत अहम हिस्सा है, एक ताकत है, और कभी कभी एक पहेली भी।
पहेली कैसे?
ये लगातार दो नावों पर सवार रहने जैसा है। एक तरफ है समाज की सेवा का मिशन, मतलब लोगों तक सच्ची और जरूरी जानकारी पहुंचाना।
और दूसरी तरफ?
दूसरी तरफ है बाजार की सच्चाई, पैसा कमाना, टिके रहना, कंपटीशन में बने रहना।
हाँ, ये संतुलन साधना तो मुश्किल काम लगता है।
बिल्कुल, और शायद यही पत्रकारिता की सबसे बड़ी चुनौती भी है। उनकी किताबों का मकसद भी यही है कि पत्रकारिता कैसे काम करती है, उसके सामने क्या मुश्किलें हैं।
और लोकतंत्र के लिए वो इतनी जरूरी क्यों है, इसे आम भाषा में समझाया जाए।
खासकर आज जब टेक्नोलॉजी, बिजनेस मॉडल, खबरें देखने सुनने के तरीके सब तेजी से बदल रहे हैं।
मतलब वो चाहते हैं कि हम सिर्फ खबरें पढ़ें या देखें नहीं।
हाँ, बल्कि ये भी समझें कि ये बनती कैसे हैं, कौन बना रहा है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। एक तरह से हमें बेहतर, समझदार न्यूज कंज्यूमर बनने में मदद करना।
और ये सिर्फ पत्रकारों या स्टूडेंट्स के लिए नहीं है।
नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो जानना चाहता है कि मीडिया हमारी दुनिया को कैसे दिखाता है और कैसे हमारी सोच पर असर डालता है।
तो चलिए शुरू करते हैं इस गहरी पड़ताल को। सबसे बुनियादी सवाल हारग्रीव्स के हिसाब से, आखिर पत्रकारिता है क्या? ये बाकी तरह की बातचीत या लिखने पढ़ने से अलग कैसे है?
हारग्रीव्स एक बहुत जरूरी बात पर जोर देते हैं। पत्रकारिता का खास काम है वेरिफिकेशन, मतलब सत्यापन।
सत्यापन?
हाँ, ये सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि जांची परखी, पुख्ता जानकारी देना है। यही वो डिसिप्लिन ऑफ वेरिफिकेशन है जो सच्ची पेशेवर पत्रकारिता को इंटरनेट पर फैली अफवाहों, फेक न्यूज और कोरी रायबाजी से अलग करती है।
तो इसका मकसद क्या हुआ?
मकसद है लोगों को ऐसी जानकारी देना जिसके आधार पर वो खुद सोच सकें, अपने फैसले ले सकें, स्वतंत्र और स्वशासित रह सकें।
डिसिप्लिन ऑफ वेरिफिकेशन सुनने में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं शायद, खासकर आज की भागदौड़ वाली दुनिया में।
बिल्कुल नहीं है। और फिर वही बात आ जाती है, समाज सेवा बनाम बिजनेस। क्या हमेशा जांची परखी खबर उतनी बिकेगी जितनी कोई सनसनीखेज खबर?
ये तो वही कश्मकश है जिसका आप जिक्र कर रहे थे।
हाँ, और हारग्रीव्स इसी पर बार बार लौटते हैं, और अब तो सिटीजन जर्नलिज्म और ब्लॉगिंग ने तस्वीर को और भी उलझा दिया है।
कैसे?
भाई, आज कोई भी कुछ भी छाप सकता है, कह सकता है, लेकिन क्या हर कोई पत्रकारिता के उन उसूलों का, उस डिसिप्लिन का पालन कर रहा है? शायद नहीं।
अच्छा, तो ये जो पत्रकारिता आज हम देख रहे हैं, क्या ये हमेशा से ऐसी थी या वक्त के साथ बदली है? हार्ग्रीव्स इसके इतिहास के बारे में क्या कहते हैं?
वो बताते हैं कि इसका सफर बहुत लंबा रहा है। कभी हाथ से लिखे पर्चे होते थे, फिर आई प्रिंटिंग प्रेस, जिसने समझिए क्रांति ला दी।
हाँ,
फिर टेलीग्राफ, रेडियो, टीवी और अब इंटरनेट। हर नई तकनीक ने पत्रकारिता का चेहरा बदला है, उसके काम करने का तरीका बदला है।
और ये जो निष्पक्षता या ऑब्जेक्टिविटी का सिद्धांत है, जिसे आज पत्रकारिता का एक बड़ा आदर्श मानते हैं, क्या वो हमेशा से था?
ये बड़ी दिलचस्प बात है। हार्ग्रीव्स के मुताबिक ये भी ऐतिहासिक वजहों से उभरा, खासकर अमेरिका में।
अच्छा,
हुआ यूं कि जब अखबार विज्ञापनों पर ज्यादा निर्भर होने लगे तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा पाठक चाहिए थे, तो उन्होंने ऐसी खबरें देनी शुरू की जो किसी एक पक्ष की तरफ झुकी हुई ना लगे, ताकि सब लोगों ने पढ़ें। मतलब निष्पक्षता सिर्फ एक नैतिक आदर्श नहीं थी,
बल्कि एक बिजनेस स्ट्रैटेजी भी थी। ये तो काफी रोचक बात है।
हाँ, मतलब पत्रकारिता के उसूल भी वक्त और जरूरत के हिसाब से बनते बदलते रहे हैं।
तो आज जो डिजिटल मीडिया के वजह से संकट दिख रहा है, वो भी शायद इसी बदलाव की प्रक्रिया का एक हिस्सा है।
हाँ, हार्ग्रीव्स का इशारा इसी तरफ है। पत्रकारिता हमेशा से खुद को बदलती आई है, नई चुनौतियों का सामना करती आई है। आज की चुनौती बड़ी जरूर है, पर यह इतिहास की कड़ी का ही एक हिस्सा है।
चलिए, अब जरा खबरें बनने की प्रक्रिया पर आते हैं। मतलब कोई घटना न्यूज बनती कैसे है? क्या हर घटना खबर होती है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर न्यूज वैल्यूज यानी समाचार मूल्यों की बात आती है। पत्रकार और संपादक कुछ पैमानों पर घटनाओं को तौलते हैं।
जैसे कि
जैसे घटना कितनी नई है, मतलब टाइमलीनेस, हमारे कितने करीब हुई है यानी प्रॉक्सिमिटी, कितने अहम लोग इसमें शामिल हैं जिसे प्रोमिनेंस कहते हैं,
और
कितने लोगों पर इसका असर पड़ेगा, इम्पैक्ट, और क्या इसमें कोई इंसानी दिलचस्पी की बात है, ह्यूमन इंटरेस्ट जिसे कहते हैं।
यानी खबरों का चुना जाना भी एक प्रक्रिया है। ये सिर्फ दुनिया का आईना नहीं है।
बिल्कुल।
हार्ग्रीव्स इसे सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूज कहते हैं। मतलब खबर सिर्फ घटना पर निर्भर नहीं करती,
बल्कि
उसे बनाने वाले पत्रकारों के नजरिए, उनके संगठन की नीतियों, वो डेडलाइन का दबाव और उनके अपने कल्चरल बैकग्राउंड पर भी निर्भर करती है।
अच्छा,
तभी एक ही घटना की रिपोर्टिंग अलग अलग मीडिया में अलग अलग दिख सकती है।
एकदम सही, इसीलिए तो।
तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम जो खबरें देख सुन रहे हैं, वो एक तरह से चुनी हुई और गढ़ी हुई सच्चाई है।
हाँ, कह सकते हैं, और ये जनता की सोच को बहुत प्रभावित करता है। मीडिया ये तय करने में बड़ी भूमिका निभाता है कि समाज किन मुद्दों पर बात करेगा, किन पर नहीं। इसे एजेंडा सेटिंग कहते हैं।
और खबर चुनने के बाद उसे बनाने की प्रक्रिया, वो कैसी होती है?
वो भी काफी जटिल है। रिसर्च करना, इंटरव्यू लेना, तथ्यों को वेरीफाई करना।
हाँ, वो वेरिफिकेशन वाला पॉइंट।
फिर लिखना, एडिट करना, और ये सब अक्सर टीम में होता है। रिपोर्टर, एडिटर, फोटोग्राफर सब मिलकर काम करते हैं।
और इस पूरी प्रक्रिया पर समय और पैसे की कमी का दबाव तो रहता ही होगा। आजकल तो 24/7 न्यूज का जमाना है।
हाँ, और ये दबाव खबरों की क्वालिटी पर सीधा असर डालता है। गहराई से छानबीन करने का वक्त कम मिलता है।
ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देने की होड़।
बिल्कुल, उस होड़ में कई बार वेरिफिकेशन पीछे रह जाता है, जिससे गलतियां होने का खतरा बढ़ जाता है।
यहीं पर पत्रकारिता की नैतिकता और उसूलों का सवाल बहुत अहम हो जाता है। हार्ग्रीव्स किन नैतिक सिद्धांतों की बात करते हैं?
वो पांच मुख्य स्तंभ बताते हैं। पहला, सच्चाई और सटीकता। दूसरा, स्वतंत्रता, मतलब किसी के दबाव में ना आना।
तीसरा,
निष्पक्षता और न्याय। चौथा, मानवता, यानी किसी को बेवजह नुकसान ना पहुंचाना। और पांचवा, जवाबदेही, मतलब गलतियों को मानना और सुधारना।
सुनने में तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी में इन्हें निभाना कितना मुश्किल होता होगा।
मुश्किल तो होता है।
सोर्स पर कितना भरोसा करें?
हाँ, ये सब असल चुनौतियां हैं। हार्ग्रीव्स मानते हैं कि नैतिकता कोई नियमों की लिस्ट नहीं है जिसे बस टिक कर दिया। ये लगातार एक संतुलन साधने की कोशिश है, अलग अलग जिम्मेदारियों, मूल्यों और हितों के बीच। आसान नहीं है, पर यही पत्रकारिता की सांख की बुनियाद है।
और ये सांख लोकतंत्र के लिए कितनी जरूरी है? पत्रकारिता का लोकतंत्र में क्या रोल है, क्या लक्ष्य है?
हार्ग्रीव्स इस पर बहुत जोर देते हैं। उनके मुताबिक पत्रकारिता लोकतंत्र का, आप कह सकते हैं, चौथा स्तंभ है। ये लोगों तक जानकारी पहुंचाती है ताकि वो सोच समझकर वोट दे सकें।
और
ये सरकार और ताकतवर लोगों पर नजर रखती है, उनसे सवाल पूछती है, उन्हें जवाबदेह बनाती है। इसे वॉचडॉग रोल कहते हैं।
जैसे वॉटरगेट स्कैंडल।
बिल्कुल, पत्रकारों के पड़ताक ने ही तो राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देने पर मजबूर किया था। वो पत्रकारिता की ताकत का एक क्लासिक उदाहरण है।
हाँ वो तो है, लेकिन पत्रकारिता की आलोचना भी तो होती है। पक्षपात के आरोप लगते हैं, सनसनी फैलाने के इल्जाम।
बिल्कुल, और हारग्रीव्स इन आलोचनाओं को नजरअंदाज नहीं करते। वो मानते हैं कि पत्रकारिता पर व्यावसायिक दबाव, राजनीतिक झुकाव और कई बार नैतिक चूक का असर पड़ता है।
कोई उदाहरण?
ब्रिटेन का फोन हैकिंग स्कैंडल इसका एक शर्मनाक उदाहरण है, जहां कुछ पत्रकारों ने खबरें पाने के लिए लोगों की निजता की धज्जियां उड़ा दी। सत्ता के साथ भी पत्रकारिता के रिश्ते अलग अलग होते हैं, कहीं वो टकराती है, कहीं साथ चलती है।
और फिर आ गई डिजिटल क्रांति, इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, इसने तो सब कुछ बदल दिया लगता है।
हाँ, इसने पत्रकारिता को बुनियादी तौर पर हिला दिया है। सबसे बड़ा असर पड़ा बिजनेस मॉडल पर। अखबारों और टीवी की कमाई पहले विज्ञापनों से होती थी,
अब वो पैसा कहाँ जा रहा है?
अब वो पैसा ज्यादातर गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी टेक कंपनियों के पास जा रहा है। नतीजा, कई पुराने मीडिया हाउस या तो बंद हो गए या बहुत संकट में हैं।
लेकिन क्या इसके कुछ अच्छे पहलू भी रहे?
हाँ बिल्कुल, जानकारी फैलाना तेज और आसान हो गया है, सिटीजन जर्नलिज्म का उदय हुआ।
हाँ, जहां आम लोग भी रिपोर्टिंग करने लगे।
बिल्कुल, जैसे अरब स्प्रिंग के दौरान देखा गया, पत्रकार अब सीधे अपने पाठकों, दर्शकों से जुड़ सकते हैं। डेटा जर्नलिज्म जैसी नई तकनीकें आई हैं जो आंकड़ों में छिपी कहानियों को सामने लाती हैं।
पर चुनौतियां भी तो बड़ी हैं, सूचनाओं की जैसे बाढ़ आ गई है।
सही कहा,
सही गलत का पता लगाना मुश्किल है। फेक न्यूज़ और दुष्प्रचार तो एक महामारी की तरह फैल गए हैं, और वो 24 घंटे खबर देने का दबाव, उफ।
ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। हारग्रीव्स कहते हैं कि जानकारी इतनी ज्यादा है कि ध्यान बढ़ जाता है, जिसे इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। 24/7 न्यूज साइकिल की वजह से गहराई कम हो गई है, विश्लेषण के लिए वक्त नहीं मिलता।
ये कब शुरू हुआ था वैसे?
ये मॉडल CNN ने खाड़ी युद्ध के समय पॉपुलर किया था और अब तो ये आम हो गया है।
तो इन सब चुनौतियों के बीच पत्रकारिता का भविष्य क्या है? क्या ये खत्म हो जाएगी? हारग्रीव्स क्या सोचते हैं?
देखिए, वो मानते हैं कि मुश्किलें बहुत हैं, पैसे की कमी है, पुराने मॉडल टूट रहे हैं, लोगों का भरोसा घट रहा है, लेकिन वो नाउमीद नहीं है।
अच्छा,
वो कहते हैं कि पत्रकारिता के तरीके बदल सकते हैं, शायद बदलेंगे भी, लेकिन उसकी जरूरत खत्म नहीं होगी, उसका जो असल रोल है वो खत्म नहीं होगा।
मतलब हो सकता है कल कागज के अखबार ना छपे,
हाँ
लेकिन खबरों की जरूरत तो रहेगी।
बिल्कुल,
जो उसका मूल काम है वो तो रहेगा।
बिल्कुल, और वो नए रास्ते भी सुझाते हैं, जैसे अब कई मीडिया संस्थान सीधे पाठकों से सब्सक्रिप्शन मांग रहे हैं।
हाँ, वो मॉडल पॉपुलर हो रहा है।
कुछ नॉन प्रॉफिट मॉडल पर चल रहे हैं, जिन्हें लोगों या संस्थाओं से डोनेशन मिलता है। कहानी कहने के भी नए तरीके आ रहे हैं, डेटा विजुअलाइजेशन, मल्टीमीडिया स्टोरी टेलिंग, कोलैबोरेटिव जर्नलिज्म।
कोलैबोरेटिव जर्नलिज्म वो क्या है?
जान प्रई मीडिया हाउस मिलकर किसी बड़ी जटिल खबर पर काम करते हैं, संसाधन बांटते हैं।
अच्छा, तो हारग्रीव्स का मूल संदेश यही लगता है कि पत्रकारिता का रूप, जैसे अखबार या टीवी चैनल, शायद बदल जाए, पर उसका काम, यानी समाज को जांची परखी, भरोसेमंद जानकारी देना और ताकतवर लोगों को जवाबदेह ठहराना, ये हमेशा जरूरी रहेगा।
बिल्कुल, बल्कि आज शायद पहले से ज्यादा जरूरी है। असली सवाल यह है कि इस काम को नए जमाने में कैसे जिंदा रखा जाए और इसे सपोर्ट कैसे किया जाए।
चलिए, अब हारग्रीव्स के विश्लेषण से निकले कुछ सबसे अहम विचारों या थीम पर नजर डालते हैं। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है, पब्लिक सर्विस मिशन बनाम बिजनेस की सच्चाई वाला तनाव।
हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि हारग्रीव्स इसे कोई कमी नहीं बल्कि पत्रकारिता की एक पहचान मानते हैं, खासकर जहां मीडिया प्राइवेट हाथों में।
ये तनाव ही समझाता है कि क्यों कभी गंभीर मुद्दों की बजाय चटपटी खबरें हावी हो जाती हैं।
हाँ, ये एक पोस्तानी संघर्ष है।
दूसरी बड़ी बात है खबरों का सामाजिक निर्माण। ये याद रखना कि खबरें आसमान से नहीं टपकती, उन्हें इंसान बनाते हैं अपनी समाज, अपनी सीमाओं और अपने दबावों के साथ।
सही कहा, यह हमें सिखाता है कि खबरों को आंख मूंद कर ना माने बल्कि थोड़ा सोच समझ कर आलोचनात्मक नजरिए से देखें।
तीसरा अहम बिंदु है टेक्नोलॉजी। ये बदलाव लाती है, पत्रकारिता को तोड़ती भी है और नए मौके भी देती है।
लेकिन हारग्रीव्स कहते हैं कि टेक्नोलॉजी अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है, सब इस पर निर्भर करता है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये सिर्फ एक टूल है।
चौथा और शायद सबसे जरूरी संदेश, पत्रकारिता लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है।
हाँ, इसकी असली कीमत इसी बात में है कि यह नागरिकों को जानकारी देकर और सरकार को जवाबदेह बनाकर लोकतंत्र को मजबूत करती है। एक सेहतमंद लोकतंत्र के लिए सेहतमंद पत्रकारिता जरूरी है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं।
और पांचवा मुद्दा जो आजकल बहुत सुनाई देता है, भरोसे का संकट। मीडिया पर लोगों का यकीन कम हुआ है।
बिल्कुल। और हार्ग्रीव साफ कहते हैं कि भरोसा मांग कर नहीं मिलता, इसे कमाना पड़ता है।
कैसे?
लगातार सच्ची, निष्पक्ष और पारदर्शी रिपोर्टिंग करके, अपनी गलतियों को मानकर।
हार्ग्रीव्स की किताबों में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो इन विचारों को और पुख्ता करती हैं। जैसे उनका कहना है कि पत्रकारिता की पहली जिम्मेदारी सच के प्रति है। ये सिर्फ सच बोलना नहीं, बल्कि सच को खोजने, उसे वेरीफाई करने और अगर गलती हो जाए तो उसे मानने की हिम्मत रखना है, चाहे सच कितना भी असुविधाजनक क्यों ना हो।
एक और गहरी बात, न्यूज मीडिया आधुनिक समाज का वो आईना है जिसमें वो खुद को देखता और समझता है।
हाँ, मतलब पत्रकार सिर्फ बताते नहीं कि क्या हुआ, वो ये भी समझाते हैं कि इसका मतलब क्या है, दुनिया कैसे चल रही है। वो हमें अपने आसपास की जटिल दुनिया को समझने में मदद करते हैं, कॉन्टेक्स्ट देते हैं।
और उस तनाव वाली बात पर लौटें तो हार्ग्रीव्स का तर्क है, पत्रकारिता एक ही वक्त में बिजनेस भी है और पब्लिक सर्विस भी, और इन दोनों भूमिकाओं के बीच का तनाव बुरा नहीं बल्कि उपयोगी है। हाँ, ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर उनका मानना है कि ये तनाव ही उसे दर्शकों से जुड़े रखता है और नए रास्ते तलाशने पर मजबूर करता है, उसे प्रासंगिक बनाए रखता है।
डिजिटल दुनिया के बारे में एक चेतावनी भी है। डिजिटल क्रांति ने हर किसी को अपनी बात कहने का मंच तो दे दिया है, लेकिन जरूरी नहीं कि इससे भरोसेमंद जानकारी का उत्पादन भी बढ़ा हो।
सही है, आवाजें तो बहुत हो गई हैं, पर भरोसेमंद आवाजें ढूंढना मुश्किल हो गया है। क्वालिटी बनाम क्वांटिटी का सवाल है।
और आखिर में फिर वही भरोसे की बात, भरोसा पत्रकारिता की सबसे कीमती पूंजी है और शायद सबसे दुर्लभ भी।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि पारदर्शिता, जवाबदेही और लगातार अच्छा काम करना कितना कितना जरूरी है, इसके बिना सब बेकार है।
तो ये सब जानने के बाद हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या कर सकते हैं? इन विचारों का हमारे लिए क्या मतलब है?
देखिए, सबसे पहले तो हम खुद बेहतर मीडिया कंज्यूमर बन सकते हैं। थोड़ा सोच समझकर खबरें पढ़ें या देखें।
मतलब
खुद से पूछें, ये खबर कहाँ से आ रही है, क्या ये सिर्फ एक पक्ष की बात तो नहीं कह रही, क्या इसमें तथ्यों के साथ राय मिलाई जा रही है, क्या इसका कोई छिपा हुआ एजेंडा हो सकता है।
और अलग अलग सोर्स देखना भी जरूरी है।
हाँ, बहुत जरूरी। सिर्फ एक पर निर्भर ना रहें, कंपेयर करें।
और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर
हम अच्छी और स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर कोई मीडिया संस्थान अच्छा, जिम्मेदार काम कर रहा है तो उसका सब्सक्रिप्शन लेकर या उसे डोनेशन देकर उसकी मदद कर सकते हैं।
और सिर्फ मीडिया पर निर्भर ना रहें।
हाँ, खुद भी अपने समाज और लोकतंत्र में सक्रिय भूमिका निभाएं, जानकारी लें, सवाल पूछें।
और एक बहुत जरूरी चीज है, मीडिया लिटरेसी, मतलब मीडिया साक्षरता।
बिल्कुल, हमें खुद भी सीखना होगा और अपने आसपास के लोगों, खासकर बच्चों और युवाओं को भी सिखाना होगा कि जानकारी को कैसे परखें, कैसे फेक न्यूज को पहचानें। ये आज के जमाने का एक बहुत जरूरी स्किल है।
इस पूरी बातचीत से मेरे लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि पत्रकारिता कोई अकेली खड़ी चीज नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है। इसकी सेहत सिर्फ पत्रकारों की ईमानदारी पर नहीं, बल्कि इस पर भी निर्भर करती है कि समाज उसे कितना महत्व देता है, सरकारें उसे कितनी आज़ादी देती हैं और हम नागरिक कितने जागरूक और सक्रिय हैं। सब जुड़े हुए हैं।
हाँ, और मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि पत्रकारिता का काम सच बताना, सवाल पूछना, लोगों को जानकारी देना, उसके तरीके से ज्यादा जरूरी है। अखबार रहेंगे या नहीं, टीवी चैनल कैसे चलेंगे, ये सब बदलता रहेगा,
लेकिन लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए
उस बुनियादी काम का, उस फंक्शन का जारी रहना जरूरी है। और ये सिर्फ पत्रकारों की जिम्मेदारी नहीं, हम सब की है कि हम सच, जवाबदेही और जानकारी के मूल्यों को बचाए रखें, उनका समर्थन करें।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नजे विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।